哦，山顶。爸爸们的روز می پیسکشن اور ساوتھانیاں دیتے ہیں جو آج بابا کہتے ہیں تم بچوں کو آپس میں کھیر کھنڈ ہو کر کے رہنا ہے یہ انتیم جنم ہے इसलिए इस अंतिम जन्म में तुमको विकारों पर विजयी बनना है, सतो प्रधान बनने बिगर आत्मा नई दुनिया में नहीं जा सकती है, और सतो प्रधान बनने का एक ही रास्ता है। कौन सा? बाबा की याद, और याद ही बच्चों से पहुंचती नहीं है, मेहनत है, अभ्यास पड़ा हुआ है, आंखें बंद करके योग करने का। बाबा ने हमको ऐसा योग नहीं सिखाया है। अलर्ट होकर के अटेंशन से याद में बैठना चाहिए, तब की आंखें मोस्टली बंद होती हैं। शायद बंद आंखों में ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा शक्ति मिलती है, ऐसे है? हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा बार बार आप बच्चों को कहते, इस देह अभिमान को छोड़, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, और देह अभिमान छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये देह अभिमान आने से कौन सी बीमारी होती है? देह अभिमान कौन सी बीमारी ले आता है? बोलो जी। नाम रूप की बीमारी ले आता है, न सिर्फ नाम रूप की बीमारी ले आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर विकारी भी बना देता है। इतनी कड़ी ये बीमारी है। इसलिए बाबा कहते, तुम्हारा इस शरीर के साथ, अपने ही शरीर के साथ भी लगाव नहीं चाहिए, अभ्यास चाहिए आत्म अभिमानी का, आत्मा समझने का। क्योंकि बाबा आपको जीवन बंध से जीवन मुक्त में ले जाने की युक्ति बतलाते हैं, और वो युक्ति है आत्म अभिमानी। यही पढ़ाई बाबा आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बंधनों से मुक्त कैसे हो जाओ। तो सबसे बड़ा बंधन है ये देह का बंधन। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं। ओम शांति। नीचे बच्चे देही अभिमानी बाप तुम्हें, देही अभिमानी बाप तुम्हें, देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान छोड़ना, तो अपने को चेक करें, जब से बाबा के बने तब से लेकर के अब तक देह अभिमान कितने परसेंट में छूटा है। ओम शांति। रूहानी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आज गीता का पहला महावाक्य, आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। आज नोट करना बुद्धि में कि सारी मुरली में आत्म अभिमानी कितना समय रहे। आत्मा समझ करके मुरली सुनी, फिर अनुभव सुनाना लास्ट में कि पूरा टाइम कौन आत्माभिमानी रहा, किसको याद करना है। आत्माभिमानी बने तो किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो याद उनको करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो और फिर आधा कल्प तुमको देही अभिमानी होकर रहना है। तो सत्युग त्रेता में तो नेचुरल देही अभिमानी है। इस थोड़े से समय का देही अभिमानी का पुरुषार्थ आधा कल्प चलता है। महसूस करो ये संगम के थोड़े समय का पुरुषार्थ कितना शक्तिशाली है, कितनी श्रेष्ठ और कितनी महान प्राप्ति है। सत्युग त्रेता में तुम आत्माभिमानी थे, वहां मालूम रहता है हम आत्मा हैं। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको हम छोड़ते हैं, सिर्फ इतना ही ज्ञान होगा, इससे ज्यादा आत्मा का ज्ञान नहीं। ये चेंज करना है, जैसे सर्प का मिसाल है, खाल पुरानी हुई छोड़ देता है। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। बार बार बाबा फोर्स दे रहा है। तो आत्मा समझ के सुन रहे हैं? कौन बनाते हैं आत्माभिमानी? बाप। जो सदैव आत्माभिमानी है वो कभी देह अभिमानी नहीं बनते हैं। भल एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये शरीर तो पराया लोन लिया हुआ है, तो लोन का अभिमान किस बात का? इस शरीर में उनका लगाव नहीं रहता है, तभी तो सीधा सीधा बोल देता है ना, इसको भी याद नहीं करना है, ये भी पुरुषार्थी है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी पढ़ रहा है। लोन लेने वाले से लगाव नहीं रहता है, उससे ज्यादा कब इसका लोन चुक दू तो मैं फ्री हो जाऊं, तो पूरा संगम लोन रहता है इसका। जानते हैं ये शरीर छोड़ना है, बाप समझाते हैं मैं ही आकर के तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तुम सतो प्रधान थे सो फिर तमो प्रधान बने हो, अब फिर से पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग लगाना सिखलाता हूं। कि मेरे से योग कैसे लगाऊं, मुझे याद कैसे करो। किसी को सिखाया जाता है कि याद कैसे करो, किसी को भी, लेकिन यहां बाबा को सिखलाना पड़ता है। कारण देह अभिमान में है, न आत्मा को जानते न परमात्मा बाप को जानते। योग अक्षर ना कह करके याद अक्षर कहना ठीक है, याद सिखलाता हूं। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे फिर दे अभिमानियों पढ़ते हो, फिर बाप आकर तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हैं, बेकारी बन जाते हैं। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे। दोनों स्मृतियां बाबा दिलाते थे, निर्विकारी, पर देह अभिमान में आए, नाम रूप में फंसे, विकारी बने, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हैं। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, ये भी बाप तुमको समझाते हैं। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि पांच विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और भारत में ही रावण राज्य है, परंतु ये नहीं जानते कि राम राज्य कितना समय और रावण राज्य कितना समय चलता है। इस समय सभी मनुष्यों की बुद्धि कैसी हो गई है, तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, क्योंकि रावण के वशीभूत है। पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत था, और भारत जैसा पवित्र खंड दुनिया में कोई नहीं। फिर भारत ही अपवित्र बनता है, और भारत जैसा फिर अपवित्र खंड भी कोई नहीं है। तो पवित्रता में भी टॉप और अपवित्रता में भी टॉप पर है। वही अपवित्र बनता, वही फिर पवित्र बनता है। तो तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए। तो सबसे जास्ती जन्म भारतवासी लेते हैं, क्योंकि सतयुग में आए। बाप समझाते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में मैं आता हूं। ये पहला नंबर, पूरे 84 जन्म कर वानप्रस्थ में जब आता है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु ये किसको भी मालूम नहीं है। क्यों क्यों मालूम नहीं है? ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति है, लेकिन ये भी किसको मालूम नहीं? क्यों क्यों मालूम नहीं? क्योंकि बाबा कहते बुद्धि तमो प्रधान हो गई है। किसकी भी बायोग्राफी को, किसी भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु अंधश्रद्धा है। तो भक्ति को कहा ही जाता है, क्या कहते ब्राह्मणों की रात। अकेली रात नहीं है, ब्राह्मणों की रात है। और सत्युग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन, अब ब्रह्मा प्रजापिता तो जरूर बच्चे भी होंगे ना, तो ये समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है, ब्राह्मणों की डिनेस्टी नहीं होती। ब्राह्मण है चोटी, वो चोटी भी देखने में आती है, फिर ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव, उनका एक ही नाम है। परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। कितने नाम है शिव के, कभी लिखे हैं, गिनती किया है? सहस्त्र नाम है। भक्ति मार्ग का चहचटा, चहचटा माना भपका, बहुत है रौनक है वैसे भक्ति की देखी जाए तो। झांझ बजाएंगे, घंटे बजाएंगे, भजन गाएंगे, मस्त हो जाएंगे, नाचेंगे, कितने कर्म कांड विधि विधान करते हैं। तो भक्ति करने वालों को आता तो मजा है, कितने बिजी हो जाते हैं, ये किया फिर ये किया फिर ये किया, कितने चित्र, कितने मंदिर, कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते ही रहते हैं। भक्ति से फिर भगवान मिलता है, किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण है तो देवता बनते, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उस समय अथाह धन था। ये बाबा तुमको याद दिलाते हैं, अथाह था। पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म लेते हो, सब नहीं लेते हैं। तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुआ, ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर फिर एक शिव बाबा ही गाया जाता है, वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाबा को याद करते हैं, दोनों से प्राप्ति नहीं होती है तब उसको याद करते हैं। जबकि दुखी होते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है, तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, किससे? किससे? बेहद के बाप के पास से। तो जरूर जीवन बंध में है, पतित है, फिर पावन जरूर बनना है। ये तो एक सेकंड की बात है, बाबा कहते एक ही सेकंड की बात है। कौन सी? पावन बनना एक ही सेकंड की बात है। ज्ञान एक सेकंड का है, ज्ञान एक सेकंड का है। आत्मनिर्भरी भाव, मन मना भाव, मध्यासी भाव, नष्टो मोह स्मृति लब्धा भाव, सेकंड युवा ना, और कितनी सी देर लगी। ज्ञान एक ही सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो, वो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ती तो आत्मा ही है। परंतु देह अभिमान होने के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हो, فلانا منسٹر ہے، یہ یہ ہے، واسطو میں میں ہوں، میں ہوں آتما۔ آتما سمجھ کے سن رہے ہو؟ آتما مسٹر مسز کے تن میں پارٹ بجاتی ہے۔ بابا کو بھی کبھی کبھی رمنیک شبد یاد آ جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں، نہیں تو آتما ہی شریر سے پارٹ بجاتی ہے۔ پھر کوئی کیا بنتے ہیں، کوئی کیا بنتے ہیں، باپ سمجھاتے ہیں۔ ابھی یہ پرانی دنیا نئی بنتی ہے، سارے ورلڈ کی ہسٹری جغرافی ریپیٹ ضرور ہوتی ہے، اور نئی دنیا ہے ستو پردھان۔ گھر بھی تو پہلے پہلے نیا ہوتا ہے تو اس سمے کہیں گے ستو پردھان، پھر پرانا جڑجڑی بھوت ہوتا تو تمو پردھان ہوتا ہے۔ تو اس بے حد کے ناٹک کا سرشٹی چکر کی نالج کو ابھی سمجھنا ہے، کیونکہ یہ پڑھائی ہے کہ یہ بے حد کا سرشٹی چکر کیسے چلتا ہے، اس کو یتھارتھ ریتی سمجھنا ہے۔ یہ بھکتی نہیں ہے، جس نے جو کہہ دیا ستیہ وچن مہاراج۔ پڑھائی میں ستیہ وچن مہاراج نہیں ہے، پڑھائی میں سمجھنا پڑتا ہے، اور سمجھ کر کے پھر اس کو پریکٹس میں لانا ہے، دھارنا میں لانا ہے۔ بھکتی کو پڑھائی نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ بھکتی میں ایم آبجیکٹ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جنم جنمانتر وید شاستر اپنیشد آدی پڑھتے رہو، یہاں تو تم کو وہاں وید شاستر پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہو جب تک سواس ہے، لیکن یہاں تو تم کو دنیا کو بدلنا ہے۔ یہاں صرف پڑھنا نہیں ہے، لیکن دنیا کو بھی بدلنے کا کام کرنا ہے، خود کو بدلنا ہے، دنیا کو بدلنا ہے۔ ستیوگ تریتا میں بھکتی نہیں ہوتی ہے، بھکتی شروع ہی ہوتی ہے دواپر سے۔ تو وہ باپ روحانی بچوں کو بیٹھ کر سمجھاتے ہیں۔ اس کو کہا ہی جاتا ہے روحانی نالج اتھوا روحانی گیان۔ روحانی نالج کون سکھلائے گا؟ سپریم روح یعنی پرم پتا ہی سکھلائے گا۔ اب وہ تو سبھی کا ایک ہی ہے، لوکک باپ کو کبھی بھی کوئی پرم پتا نہیں کہیں گے، پارلوکک کو ہی پرم پتا کہا جاتا ہے، اور وہ ہے پرم دھام کے رہنے والے۔ باپ کو یاد بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہے گاڈ، ہے ایشور۔ اب واسطو میں ان کا نام تو ایک ہی ہے، پرنتو بھکتی میں پھر انیک نام رکھ دیے ہیں۔ بھکتی کا پھیلاؤ بہت ہے، وہ سب منشیہ مت پر ہیں۔ اب منشیوں کو چاہیے ایشوری مت۔ شروع شروع میں ایک کتاب نکلا تھا، منشی مت اور ایشوری مت میں انتر، اس کا بڑا اچھا کنٹراسٹ جگدیش بھائی نے لکھا تھا۔ ایشوری مت ہے شری مت۔ 108 کی مالا بنتی ہے نا، یہ پرورتی مارگ کی مالا ہے۔ پھر پنرجنم لیتے لیتے سیڑھی اترتے اترتے انسالوینٹ بن جاتے ہیں، بدھی بالکل انسالوینٹ بن جاتی ہے، تو منشیہ پھر دیوالا مارتے ہیں۔ تو 100% سالوینٹ تھے، اور پھر اس سمے 100% انسالوینٹ، ایسی بدھی بھرسٹ जो राइट और रॉन्ग, पाप और पुण्य की भी समझ नहीं, बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वो लॉक किसने लगाया? लॉक किसने लगाया? माया ने। तो चाबी किसके पास है? फिर उस ताले को खोलने की ताला लगाए माया, रावण, और चाबी बाप के पास। वंडर है कि नहीं? लॉक किसने लगाया? गोदरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना ही नंबर वन था, उतना कोई खंड नहीं था। कितनी भारत की महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि भगवान भारत में आते। भारत पैराडाइज था, भारत में देवी देवता थे। परंतु ड्रामानुसार गीता का खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की ये भूल है। भारत में ही गीता का खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं, जिससे सर्व की सदगति करते हैं, उसी को ही खंडित कर दिया है। अब केस कौन चलाएगा उसके ऊपर? इसलिए गीता का भगवान सिद्ध करने पर अभी धूम शुरू हुई है। तो भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, जो अब फिर से बन रहा है। ये उल्टा झाड़ है, इसका बीज ऊपर है, उसको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, तो बाप समझाते हैं, मैं वृक्षपति आता हूं। तो सारे भारत पर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आता है तो राहु की दशा बैठ जाती है। फिर भारत का क्या हाल हो जाता है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। वहां तो तुम्हारी आयु कितनी बड़ी रहती है, क्योंकि तुम वहां पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनते हो। आयु भी छोटी हो जाती है और 63 जन्म लेते हो, 3 गुना। तो अभी बाप समझाते हैं, सतो प्रधान बनना है, बनना है, इसलिए मामेकम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है ना, इसलिए उस एक बाप का परिचय तो सब धर्म वालों को चाहिए कि परमात्मा कौन है। आत्माओं का बाप एक है, बाकी सब ब्रदर्स है, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के ही बच्चे हैं। फल कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, परंतु वो इसका अर्थ तो नहीं जानते हैं। आत्मा कहती तो राइट है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सब ब्रदर्स का बाप एक है। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को, बड़े बाबा को वर्षा देना है। वो आते ही भारत में है, शिव जयंती भारत में मनाते हैं, परंतु वो कब आया था ये फिर किसको भी पता नहीं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। शिव जयंती से सीधा युद्ध पर आ गया, तुम्हारी युद्ध है पांच विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर वन दुश्मन है। रावण को जलाते हैं, परंतु रावण कौन है? परंतु रावण कौन है, क्यों उसको जलाते हैं? कुछ भी तो जानते नहीं। द्वापर से लेकर के तुम नीचे उतरते उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद करते हैं, याद करके पूछते हैं, और दूसरी तरफ फिर कह देते हैं वो सर्वव्यापी है, जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया उसको तुम माया के चक्कर में आकर के गाली देते हो। बाबा कान पकड़ता है, जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया तुम माया के चक्कर में आके और गाली देते हो। बाप कहते, मीठे बच्चों, फिर भी देखो, गाली देते हैं फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों, कड़वे बच्चों का, कभी खट्टे बच्चे का कभी भी नहीं कहता है, फिर भी कहता है मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो। अपने तो 84 लाख रखे, फिर भी लिमिट तो दे दी ना, मुझे तो अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कण कण में तुमने कह दिया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, फिर ड्रामा कह दिया, फिर न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ड्रामा ही ऐसा है। बेहद के बाप की ग्लानी करते करते कितनी पापात्मय बन गए हो। बेहद के बाप की ग्लानी करते कितनी पापात्मा बन गए। कल भी पापा ने कर्मों की गुह्य गति याद दिलाई, तो आधा कल्प तो वैसे पापात्मा बने, फिर ब्राह्मण बन करके, और फिर अगर विकर्म किया, उल्टा कर्म किया, बाप का नाम खराब किया, तो फिर उसका क्या रिजल्ट होगा? तो बाबा ने कितना अंडरलाइन कराया कि कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले बनो। अपना धर्मराज खुद बनो। इसलिए कितना मुझे अपने आप पर अटेंशन रखना चाहिए, मेरा पहरेदार स्ट्रांग चाहिए। रावण राज्य है ना, ये तो तुम भी जानते हो। इस समय सब भक्तियां हैं, सबकी सदगति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को तो कभी भी बाबा नहीं कहते हैं। पांच विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, और अभी है संपूर्ण विकारी। देवता जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। आत्मनिश्चय जरूर करना है, हम आत्मा है। इस समय ब्राह्मण कुल में है, फिर हम देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, चोटी फिर ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण हो ना, पूछता है, तुम ब्राह्मण हो ना? सबसे ऊपर में है फिर शिव बाबा, भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें ना ब्राह्मणों की चोटी है ना चोटियों का बाप। विराट रूप में न ब्राह्मणों की चोटी है न चोटियों का बाप है। विष्णु चतुर्भुज बनाते हैं ना, कुछ भी तो वो अर्थ नहीं समझते हैं, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते हैं, नहीं तो भारत का कोर्ट ऑफ आर्म्स क्या होना चाहिए। भारत का कोर्ट ऑफ आर्म्स क्या है? कौन सा है नहीं मालूम ना? नोट के ऊपर में तीन शेर है ना, भारत के झंडे पर भी बीच में चक्र में तीन शेर है, वो उसका कोर्ट ऑफ आर्म्स है। और भी देखो बाबा सुनाता है, नहीं तो भारत का कोर्ट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव होना चाहिए। अभी तो ये है कांटों का जंगल, तो जंगली जानवरों को कोर्ट ऑफ आर्म्स बना दिया है, छोड़ता थोड़ी है, जंगली है, कांटों का जंगल है, भ्रष्टाचारी है, पत्थर बुद्धि है, तो क्या करेंगे, जंगली जानवरों को ही कोर्ट ऑफ आर्म्स में रख दिया है। उसमें फिर नीचे और लिख दिया है सत्यमेव जयते। क्या शेर सत्यमेव जयते होंगे? सत्युग में दिखाते हैं शेर और बकरी एक कट्ठे जल पीते हैं। अब सत्यमेव जयते माना विजय, सत्य की विजय है। तो सब वहां पर क्षीरखंड होकर के रहते हैं, लून पानी जरा भी नहीं होते। रावण राज्य में है लून पानी, सारा दिन लड़ते ही रहेंगे, झगड़ते ही रहेंगे। और राम राज्य में क्षीर खंड हो जाते हैं, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। एक दो को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते रहते हैं, बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। नाम ही है इसका रावण राज्य, तो रावण मन ही रुलाने वाला है, तो घड़ी घड़ी रुलाता ही रहता है, रुलाता ही रहता है। बाप कहते हैं इन पांच विकारों पर जीत पाकर के जगत जीत बनो, ये अंतिम जन्म, ये अंतिम जन्म। अंतिम भी अभी पूरा कहाँ है, कितनी घड़ियां बाकी है, ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, अब फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, शरीर का मैल तो घर पर भी तुम पानी से उतार सकते हो ना, कि गंगा में ही नहाएंगे तो ही मैल उतरेगा। आत्मा तो उससे साफ नहीं हो सकती है, भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। सत्युग तो सतगुरु तो एक ही है सदगति करने वाला, सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सार है सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की پریکٹس کرنی ہے. دوسرا, سب سے کھیر کھنڈ ہو کر رہنا ہے. اس انتم جنم میں وکاروں پر وجے پراپت کر جگت جیت بننا ہے. وردان, محسوستا کی شکتی دوارا سو پریورتن کرنے والے, محسوستا کی شکتی دوارا سو پریورتن کرنے والے تیور پرشارتھی بھاو. کوئی بھی پریورتن کا سہج آدھار ہے محسوستا کی شکتی. جب تک محسوستا کی شکتی نہیں آتی تب تک انبھوتی نہیں ہوتی, اور جب تک انبھوتی نہیں ہے تب تک برہمن جیون کا وشیشتا کا فاؤنڈیشن مضبوط نہیں. امنگ اتساہ کی چال نہیں ہے کہ پہلے میں محسوس کروں کہ مجھے پریورتن ہونا ہے. وہی محسوستا نہیں آتے کہ میں تو ٹھیک ہی ہوں نا, میرے میں کیا ہے, میرے میں کچھ نہیں ہے جو مجھے پریورتن کرنے کی ضرورت ہے. تو جب تک وہ محسوستا نہیں تب تک پریورتن نہیں. پریورتن نہیں تو برہمن جیون کا جو فاؤنڈیشن ہے, جو اندر آتما کو سدیو امنگ اتساہ چاہیے, وہ نہیں رہ سکتا ہے. جب محسوستا کی شکتی, تب محسوستا کی شکتی ہر بات کا انوبھوی بناتی ہے, تب تیور پرشارتھی بن جاتے ہیں. محسوستا کی شکتی سدا کال کے لیے سہج پریورتن کرا دیتی ہے. سلوگن ہے, سنیہ کے سوروپ کو ساکار میں ایمرج کر برہما باپ سمان بنو. سنیہ کے سوروپ کو ساکار میں ایمرج کر برہما باپ سمان بنو. تو وردان کیا ہوا, محسوستا کی شکتی دوارا سو پریورتن کرنے والے تیور پرشارتھی بھاو. تو تیور پرشارتھی کے لیے چاہیے محسوستا کی شکتی, اور محسوستا ہو تو پریورتن ہو. اور سلوگن ہوا, سنیہ کو ساکار میں ایمرج کر برہما باپ سمان بنو. کون سا نمبر ہے بھیا اس میں ٹک کیا ہوا ہے؟ 10. اگر کوئی تھوڑا بھی کمزور ہوتا ہے, تو ان کو اپنے سہیوگ دوارا, چاہے سوئم دوارا چاہے بڑوں سے, سہیوگ دلاتے رہنا ہے. پروپکاری بن, سو اپکار اور پروپکار دونوں کو اٹینشن میں رکھ, بڑھتے بھی رہنا ہے اور بڑھاتے بھی رہنا ہے. اس کو کمزور دیکھ کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے. خود سہیوگ دو, نہیں دے سکتے بڑوں سے سہیوگ کراؤ. तो उसमें स्व उपकारी और परोपकारी डबल फायदा हो जाएगा, तो खुद भी आगे बढ़ेंगे और औरों को भी बढ़ाते रहेंगे। अव्यक्त इशारे, विघ्न बनो और निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ। 5 नंबर, कोई भी बड़े से बड़ी परीक्षा में पास होने के लिए परखने की शक्ति चाहिए। जब पहले से परख लेंगे कि किस प्रकार का विघ्न है व माया किस रूप में आ रही है, इसकी रिजल्ट क्या होगी, तो परख कर अगर फौरन निर्णय लेंगे तो उस विघ्न को जीत सकेंगे। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वो कभी भी हार नहीं खा सकता है। तो विघ्न जीत के लिए निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब हो जब ये बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो, एक बाबत से बुद्धि लगी हुई हो, तो निर्णय शक्ति भी तभी काम करेगी। ओम शांति,
ओम शांति। कल तक कुमारियों की रिट्रीट बहुत अच्छी सफलतापूर्वक रही। लगभग 80 से अधिक ही थी कुमारियां और उनके साथ आई हुई गाइड टीचर्स बहने, और शारदा दीदी के आने से इस बार तो बहुत अच्छी सफल रिट्रीट रही। इस रिट्रीट में इतना उमंग उत्साह भरा, दीदी ने 21 कुमारियां सेंटर पर रहने को तैयार हो गई पढ़ते हुए और जॉब करते हुए। दीदी ने कहा थोड़ा समय भले ये करते हुए रहें, फिर बाद में धीरे धीरे छोड़ देंगे।
गीत मुझे ने आप साथ दोगे तो, मेरा गला ठीक नहीं है दीदी। उर्मिला में नाम कौन सा गीत बहन जी? सुशीला को आता, मुझे गीत नहीं आता। आई नहीं आज आप इधर
ओम शांति। दीदी ने कहा है तो जो मन में भाव उठे हैं वो उद्गार दीदी के लिए प्रकट करती हूँ। सबसे पहले तो भट्टी के पहले मैं दीदी का स्वागत करना चाहती हूँ। स्वागत क्या करे, दीदी तो ऐसे हैं, हार पिनाए इनको क्या जो कभी हार नहीं खाते हैं, हार पिनाए इनको क्या जो कभी हार नहीं खाते, फूल इन्हें दे कैसा हम जो फूल सा महकते रहते हैं, फूल इन्हें दे कैसा हम जो फूलों सा जैसा महकते रहते हैं, मणियां क्या दे इनको हम जो मस्तक मणि कहलाते हैं, महिमा क्या गाएं इनकी स्वयं भगवान महिमा इनकी गाते हैं, महिमा क्या गाएं इनकी स्वयं भगवान महिमा गाते हैं। फिर भी भट्टी के पहले दीदी का जैसा नाम है शारदा बहन, तो उसी अर्थ में दीदी से और हमको कुछ प्राप्त करना है। इतना ज्ञान तो दिया है लेकिन और भी कुछ प्राप्त करने के लिए मैं एक 4 लाइन दीदी से यही याचना करती हूँ कि
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से ज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुम स्वर की देवी हर गीत तुम से, तुम स्वर की देवी हर गीत तुम से, हर शब्द तुमरो है, हर शब्द तुमरो है, संगीत तुम से हम है अधूरे हम।
अधूरे हम हैं अकेले, हम हैं अकेले, अज्ञानता से हमको तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमको तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। ओम शांति।
आचार्य आप आओ ना थोड़ा साथ में। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान, कहता है दिल और मचलता है दिल, मेरे साजन ले चल मुझे तारों के पास, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ।
आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम
मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं, चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर, आ जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान।